ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, हर कदम पे हमें लगता है कि हमारे जिंदगी में कोई ना कोई क्राइसिस आ गया है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे हम हैंडल ही नहीं कर सकते। और वो क्राइसिस यहां से भी शुरू हो सकता है कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, गाड़ी चला रहे थे तो पेट्रोल खत्म हो गया और हम क्या करेंगे, बच्चे को चोट लग गई, या फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है कि हमें होस्टेज ले लिया गया, हम एरोप्लेन में सफर कर रहे थे और हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया। क्राइसिस कहां से शुरू होकर कहां तक जा सकता है, क्या है क्राइसिस, क्यों हमारी जिंदगी में जो क्राइसिस आता है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि सिचुएशंस पर हमारा कोई जोर नहीं है, दिस काइंड ऑफ क्राइसिस कैन कम एनी टाइम इन आवर लाइफ, हमें क्या करना है, क्या हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हर बार हम ये कहते हैं कि ये ज्ञान हमें तैयार करता है जीवन की हर मुश्किल, जीवन के हर पहलू को समझकर उसे डील करने के लिए। आज हम बात क्राइसिस की करते हैं, आज हम बात उन सिचुएशंस की करते हैं अपनी जिंदगी की जिन पर हमारा कोई बस नहीं। वैसे तो किसी भी सिचुएशन पर बस नहीं होता, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेडली आ जाती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ खास लंदन से बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन है, जो कि न सिर्फ यूरोप को बल्कि मिडिल ईस्ट के जो ब्रह्मा कुमारी की जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी देखरेख करती हैं और साथ ही एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रह्मा कुमारी की यूनाइटेड नेशंस में। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
जयंती बहन, जैसे हम जिंदगी में देखते हैं कि एनी टाइम अ सिचुएशन कैन कम जिसको मैं हैंडल ही नहीं कर सकता और मेरे लिए वो क्राइसिस बन जाता है। किसी ने गाड़ी चला रही थी और टक्कर मार दी और पुलिस आ गई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, इट्स अ क्राइसिस। मेरे घर में मैं थी, खाना बना रही थी, सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर नहीं है, इट्स अ क्राइसिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मैं जा रही थी, मैं घर पर ही बैठी थी और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुझे पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है या मेरे हस्बैंड कहाँ है, इट्स अ क्राइसिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू।
आपने इसमें कुछ छोटी बातें भी बताई और कुछ बहुत बड़ी बातें भी बताई। तो पहले छोटी बातों के लिए मैं थोड़ा बताती हूँ कि छोटी बात भी जब हम शब्द कहते हैं क्राइसिस हो गया है, उसका मतलब ये है कि हम कोप नहीं कर पा रहे हैं। मानो कि जैसे बैटरी होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपका कैमरा फ्लैश नहीं चलेगा, आपका अलार्म क्लॉक नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब कि आत्मा के अंदर जो शक्ति थी वो जैसे कि शक्ति यूज करते 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 अभी इतनी कम आकर के रही है जो हम छोटी सी बात को भी डील नहीं कर सकते हैं। मानो कि आपकी मदर है, आपको देख करके कहेंगे ये तो बहुत सिंपल बात है, छोटी सी बात है, परंतु आपके लिए क्राइसिस हो गई है। और उसमें मैंने देखा है कि कोई भी बात का ज्यादा चिंतन चलता है ना, मानो कि बच्चा देर से घर में आए स्कूल से, तो जो चिंतन चला तो वो हमने छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लिया। तो ज्ञान क्या कहता, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती, कि अपने संकल्पों को थोड़ा शांत करना हम सीखे, ताकि जो सिचुएशन है हमारे पास इतनी क्लैरिटी हो जो हमको क्या करना चाहिए हम उसमें समझ करके फिर वो छोटी सी बात को छोटा कर लेवे, न कि छोटी बात को बड़ा कर लेवे। फिर आती है जब रियलिटी में बड़ी बात होती है, मानो कि जैसे मुंबई में ये सारा काम हुआ था, या जिस समय न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिरे थे वो सारा कार्य हुआ था, उसका मैं एक कहानी सुनानी चाहेंगी। एक भाई है जो राजू का अभ्यास करता, वो सिविल इंजीनियर है, तो वो ट्विन टावर्स में काम करता है, तो वो तो जल्दी पहुंच गया था और वो जो एरोप्लेन का हिट हुआ था, इट वाज अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो वो तो पहले से ही ऑफिस में था and he was on the 48th floor, something like that. तो जैसे ही हिट हुआ तो दो प्रकार के आवाज आने लगी, कोई कहे कि सब बैठ जाओ, सब रुक जाओ, और कोई कहे नहीं भागो। तो उस समय वो एक सेकंड शांत रह गया और अंदर ही अंदर उसने सोचा कि अभी मुझे क्या सिग्नल मिल रही है, इंट्यूशन मुझे क्या कह रही है। तो वो शांति से भागा नहीं परंतु वो निकलने लगा। और जबकि उसकी शांत में स्थिति थी और उसको देख करके उसको फॉलो करने लगे। वो आता गया आता गया, रास्ते में स्टेयर्स पर कितने टूटे हुए पाइप्स मिले, कितना पानी बह रहा था, कितने वायर्स चल रहे थे जहां कोई भी गिर सकता था, परंतु इस एक व्यक्ति की अचल अडोल स्थिति औरों को भी निर्भय बना लिया। वो भी शांति से आते रहे, वो नीचे तक न सिर्फ खुद पहुंचा परंतु उसके साथ 60 लोग और भी नीचे सेफ्टी पर पहुंच गए। जैसे नीचे पहुंचे, बिल्डिंग से निकले, वो इमारत गिर गई। और फिर उन्हों को तो भी अंदर तो बहुत ट्रॉमा थी, तो मैनहट्टन में अपना मेडिटेशन सेंटर है, तो उन लोगों को वो सेंटर पर लेके गया। उन्हों को प्यार से, शांति से, उन्हों को वातावरण से शक्ति मिली, चाय पिलाया। तो ये तो एक कहानी, ऐसे अनेक और कहानियां होंगी।
एंड इट इज अमेजिंग, यू नो, वी बीन टॉकिंग अबाउट, हम यही बात कर रहे थे कि शांत रहना या सहन करना एक शक्ति हो सकती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें मिलता है क्राइसिस में।
बिल्कुल, जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, जिसको क्राइसिस कहें, जो बहुत बड़ी बात है जिसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, न हमारा दोष था परंतु बाय चांस डेस्टिनी अनुसार वो बात हमारे से गुजर रही है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम अंदर जाकर के अपनी स्थिति को हम शांत में बना के रखें। तो फिर जो हमारी डिसीजन कैपेसिटी होंगी, हम उसमें रास्ता ढूंढ लेंगे कि अभी हमको क्या करना है। शांति सिर्फ बैठ करके जो कुछ हो रहा है वो देख लो, ऐसी बात नहीं है। शांति एक शक्ति है जिससे हमें पता चलता है कि अब मुझे क्या आगे का कदम उठाना है, जिससे मैं अपना भी बचाव कर सकूं और जो मेरे साथी है उन्हों का भी मैं बचाव कर सकूं।
That's wonderful actually। शांति की अगर हम बात करते हैं तो शांतिमय होते ही हमारी इंट्यूटिव पावर जो है वो क्लियर हो जाती है।
जी,
बिकॉज सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम डरे नहीं, बिकॉज कोई भी सिचुएशन आती है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो जयंती बहन है वो भय। वो भय है कि अब क्या होगा, तो वो भय जो है समवेयर वो हमें ना सोचने देता है, हमें ग्रिप कर लेता है पूरी तरह से।
ये जो फालतू संकल्प हमारे चलते हैं ना, वो छोटी सी बात को भी पहाड़ के समान बना लेते हैं, और यदि हमको पहाड़ को राई बनाना है तो हमको अपने संकल्पों को शांत करना होगा। संकल्प से वो एक्सपेंशन हो गया, और संकल्प को मर्ज करने से वो बड़ी बात भी सिंपल बात हो गई, जिसका हम हल निकाल सकते हैं। और एक तो भय आता है मृत्यु का, क्योंकि हमें ये बात की पहचान नहीं रही है कि मैं आत्मा तो अनादि अविनाशी हूँ, और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे आत्मा को कभी भी किस बात का कुछ डर नहीं, भगवान मेरा साथी है, तो फिर आंधी तूफान क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। पर हम इस बात को भूले हुए हैं, तो छोटी छोटी बातों में डर आता रहता है। यदि आत्मा की जानकारी है तो फिर इस शरीर को कुछ भी चोट लगता तो हम सोचते हैं कि परमात्मा की हीलिंग पावर इसको जल्दी ठीक कर लेंगी। आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है तो वो प्रकाश, वो लाइट, हम कहां पर भी चोट है उसको देख करके उसको जल्दी हील कर सकते हैं। तो छोटी बात को हम बड़ी बना लेते हैं भय के कारण। तो एक तो है शरीर के साथ कुछ भी बात होती है, उसमें भी फिर पास्ट में किसी को कोई बीमारी हुई है, आपने उसकी बातें सुनी है, आपको लगता है मुझे भी वो बीमारी हो गई, और वास्तव में हो, इट्स परहैप्स नॉट इवन दैट।
नो, बट प्रॉब्लम ये आती है व्हेन पीपल से, बिल्कुल वेरी ट्रू दैट जब मेरे हाथ में नहीं है सिचुएशन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी एक्चुअली, वी ऑलवेज एट टाइम्स से दैट मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिचुएशन मेरे सामने आके, खासकर अगर हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बच्चा बच्चा तक डायबिटीज और हाइपरटेंशन से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, और ये जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो तो इतनी ज्यादा इसमें इस वक्त कहा जा रहा है, WHO की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि भारत में जो है वो उसकी मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। तो जयंती बहन, जब ये क्राइसिस आते हैं या फिर कैंसर हो जाता है, जो एक बीमारी आ जाती है, इनको फेस करने के लिए इस सिचुएशन को, जो ये क्राइसिस है, उसमें हम कैसे अपनी मनस्थिति को रखें और उसमें हमारे सारे विश्वास जोड़ने लगते हैं
जी,
पेन आ जाती है
जी,
यू नो एबिलिटी टू कोप अप विद पेन नॉट मेनी पीपल हैव
जी। मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। हेल्थ का टॉपिक और मनोवृत्ति का उसका कनेक्शन एक अलग ही सेशन लेना होगा,
मैं
समझती। परंतु ये जो भय की बात आती है उसके संबंध से मैं थोड़ा वर्णन करनी चाहेंगी। एक बहन है जिसको आजकल लंग कैंसर है। थोड़ा समय पहले लंदन से निकलने से पहले मैं उसके पास गई। वो इतनी कमजोर थी जो अपने पास नहीं आ सकी, तो मैं उससे मिलने गई। तो वो मुझे कहे कि बस मैं सोचती हूँ कि मैं पति के लिए बहुत बर्डन हो गई हूँ, मैं बच्चों के लिए बहुत बर्डन हो गई हूँ, अभी तो मैं भगवान को कहती हूँ मुझे छुट्टी करे। मैंने कहा कि आपने ये सोचा कि आपको पति कितना प्यार करता, आपके बच्चे आपको कितना प्यार करते, और आप यदि इस संकल्प में कहो कि बस मुझे जाना है तो उनों के जीवन में कितना वैक्यूम आ जाएगा। तो आप ये समझो कि ये जो बात सामने आई है उसमें हमें गिफ्ट कौन सी मिली है।
बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी, यू नो वी एट टाइम्स वी वन टॉकिंग अबाउट कि हर क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ दे रहा है।
तो उसमें फिर हम जैसे बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा उसको कि देखो तुम्हारी सोशल लाइफ इतनी व्यस्त है जो तुमको कभी भी अपने लिए समय नहीं मिला है, आपको पति के साथ शांति से बैठ करके बातें करने का मौका नहीं मिला है, बच्चों के साथ उस तरह का लेन देन करने का समय नहीं मिला है, आपको अपने लिए सोचने का टाइम नहीं मिला है। अभी तो आपकी सोशल लाइफ उस तरह से नहीं चल पा रही, अभी तो हाल फिलहाल वो तो बंद है। तो ये जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिला है समय का, आप उसके लिए अपनी मन से थैंक्स दियो, और आप ये भी भगवान को थैंक्स दियो कि जो आपके परिवार वाले हैं वो तो आपको नहीं कहते ना कि आप हमारे लिए बर्डन है। ये तो आपका खुद का नेगेटिव संकल्प आ गया। अभी आप इस बात को समाप्त करके आप जो बातों की आपको अभी मौका मिला है उसको अप्रिशिएट करो, और पति को, बच्चों को वो समय दियो, खुद को समय दियो। तो मैं समझती 15-20 मिनट बातचीत करने के बाद वो मुस्कुराने लगी। तो ज्ञान से मैंने देखा है कि जो एटीट्यूड चेंज होता, पर्सपेक्टिव चेंज होता, पहले जो अंधकार लगता था एक प्रकाश नजर आने लगता, तो उसमें फिर और हिम्मत आती है और आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं विल टू लिव। जब विल हमारी, जब हमारा खुद का संकल्प वो समाप्त हो जाता है तो फिर जीना मुश्किल होता। परंतु यदि अपना विल होता कि हाँ मुझे कुछ करना ही है, कुछ और आगे भगवान को मेरे द्वारा कराना है, तो वो जो विल होता उससे सब कुछ ठीक हो जाता।
एक्चुअली एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। बहुत से हमारे दर्शकों के कॉल जब आते हैं या इवन ईमेल्स भी आ रहे होते हैं, जब सचमुच में ये नहीं समझ में, मुझे भी नहीं पता चलता था कि बीमारी में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी ट्रू कि हमें अदरवाइज जिंदगी में वक्त मिलता ही नहीं है। इतना वक्त तो कभी भी नहीं मिला होता कि हम अपने परिवार या बच्चों के साथ वो वक्त गुजार पाएंगे। और अगर इस दौरान हमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो वाइब्रेशन स्वतः ही, तो अगर कभी किसी मौके पर हम भार लग भी रहे होंगे हमारे बच्चों को, सपोज कभी लगने लगता है इतनी भी, वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे
जी,
क्योंकि हम उन्हें प्यार इतना दे रहे होंगे
जी। आप हमारी दादियों से मिले हैं, वन इज 93, अनदर वन इज 81, और बाकी और भी सब उस आयु वाले हैं, परंतु उनका एंथुजियाज्म फॉर लाइफ इज समथिंग वंडरफुल। तो कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता आप ठीक हैं? वो मुस्कुराते कहेंगे आप ठीक हो। डॉक्टर्स उन्हों के पास आएंगे, वो डॉक्टर से पूछेंगे आप ठीक हो,
आपने क्या खाना खाया। ओ वेरी ट्रू। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये जितने भी, अगर जितने भी लोग जो कि इस तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर हमारे वो दर्शक देख रहे हैं, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स ट्राई टू मेक इट वर्क फॉर अस, you know, and for our loved ones, जितने भी लोग हमारे अपने हैं, जिन जो हम क्योंकि पेन में होते हैं तो वो बेचारे और पेन में आ रहे होते हैं।
बिल्कुल। उनको और ही हम दुखी करते हैं।
हाँ।
और यदि उनको हमारा फिक्र रहता कि अभी हम इसको क्या करें, कैसे खुश करें, तो और ही हमारे ऊपर वो बर्डन चढ़ता जाता है। परंतु हम उनों की सेवा करें तो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। अब तीन बातें आती हैं, दवा, दवा तो लेनी ही है, मैं ये नहीं कहती कि दवा नहीं लेनी है, दुआ, ब्लेसिंग्स और योग बल, परमात्मा के साथ संबंध। और जो हमारी दादियां हैं वो हमको हिसाब बताती हैं, दवाई है 5%, दुआ है 45% और योग बल है 50%। तो यदि इस प्रकार से हम सोचें, तो यदि तबीयत की कोई क्राइसिस आती, और मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती, आपका जिस तरह से जीवन चल रहा है सडनली वो रुक जाता है, सब कुछ आपको सोचना पड़ता है अभी कैसे करें, क्या करें, तो अपनी स्पिरिट्स को हाई रखना भिन्न भिन्न प्रकार से, ज्ञान से, योग से, सेवा से, औरों को खुश करने से, तो उससे फिर जो हम अपने को भी लिफ्ट कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन सहज चल पाती है। बाकी आपने कहा दर्द की बात, उसमें आप सोचो कि एक तो होता है आत्मा को दर्द, किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसे वृतांत बीता, उस कारण से वो मेमोरीज हमारी दुखी हो गई, तो वो दर्द एक अलग प्रकार का है, उसका भी इलाज है परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति। परंतु जो शरीर का दर्द होता, उसका मैंने देखा है कि यदि डिटैच हो जाओ, आत्मा तो वैसे है ही शरीर से अलग, परंतु दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, परंतु आत्मा यदि मन स्थिति से डिटैच होकर के शरीर को गुड वाइब्रेशंस देवे, तो जो शरीर को दर्द हो रहा है वो सहन शक्ति और हमारे में बढ़ती है। मुझे याद आता, बहुत वर्ष पहले मैं एक कार एक्सीडेंट में थी, कोई और ड्राइव कर रहा था, परंतु मुझे ही चोट लगी और यहाँ पर 14 स्टिचेस उनको लगाने पड़े, और मुझे कहा कि हम तुमको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिर फेस है तो उसका कुछ चेंज हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल जितना आप स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना मेरे लिए काम सहज होगा। तो मैं यहाँ अपने को स्थित कर लिया और बिल्कुल लगता था कि सुई अंदर जा रही है, धागा निकल रहा है। आप सोचो, एक एक सुई, एक एक धागा निकलता गया, परंतु आत्मा यहाँ थी और मैंने अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखा, तो उसका काम सहज भी हो गया। और उन्होंने कहा था कि शायद एक सप्ताह लगेगा ठीक होने में, 3-4 दिन में मैं ठीक हो गई। तो मैं मानेंगी कि जबकि डिटैचमेंट का प्रैक्टिस है और फिर साथ साथ इस शरीर को हम साफ रखते हैं, साफ मीन साबुन से साफ नहीं, परंतु जो हम खान पान जो कुछ भी हम लेते हैं, इसके अंदर के स्थिति को भी हम क्लीन रखते हैं, तो उसमें हीलिंग कैपेसिटी और ज्यादा आ जाती।
वेरी ट्रू। सो और इट इज अमेजिंग, यू नो, आई कैन मेक इट आउट कि आप किस तरह से अपने आप को स्थिति में रखकर यू कुड इवन वॉच समथिंग हैपनिंग टू योर बॉडी।
जी,
यू नो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सबसे बड़ी बात जयंती बहन ये कि हम सब में ये कैपेसिटी है
बिल्कुल
इस तक पहुंचने की, और जितना योग का हम अभ्यास करते जाएं, हम जहां बात हेल्थ की कर रहे हैं, क्राइसिस जब हेल्थ का आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें हम कर तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो दे सकते हैं, और इट कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी जो कि लाइफ लॉन्ग। और बाकी जहां तक डर फ्यूचर का, बेसिकली वो गहरी बीमारी आते ही, बड़ी बीमारी आते ही, चाहे वो कैंसर हो या और ऐसी बीमारी जो मुझे स्टक कर देती है, मुझे रोक देती है, उसमें सबसे बड़ा जो भय, जो फैक्टर काम करता है वो है कि व्हाट विल हैपन, क्या मैं सरवाइव करूंगा, वो जो भय, मृत्यु का भय की जो बात हम कर रहे थे।
तो आत्मा अनादि है, वो तो सही बात है, परंतु मैं दूसरी बात कहेंगी, मैं कहेंगी कि एक एक दिन कितना कीमती है, मुझे उस बात का वैल्यू पता चला। तो एक एक दिन हम किस तरह से यूज करते हैं, नहीं तो हमारे दिन कैसे बीतते हैं पता भी नहीं चलता। परंतु जब हमको 3 मास, 6 मास, कुछ भी उन्होंने प्रोग्नोसिस दिया हो, परंतु यदि हमको उसकी वैल्यू हो जाती है तो हम उस समय को बहुत अच्छी तरह से सफल करते हैं। तो जैसे कि हमको मालूम होता कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, आत्मा जहां पर भी जाएंगी वो अच्छे संस्कार अपने साथ लेके जाएंगी। आज हम दुखी होंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, आत्मा वो संस्कार
वो सब लेके जाएगी। वेरी ट्रू। सो यू प्रिपेयर एक्चुअली।
तो फिर ये अपने लिए तैयारी करने का हमको समय होता, हमको किस प्रकार के संस्कार लेके जाने हैं। मानो आज आपको लंदन जाना है, आपको अपना सूटकेस पैक करना है, आपको पता है कि वहां पर सर्दी बहुत है, तो आप उस अनुसार पैकिंग करेंगे। तो हमको अभी आगे यात्रा कहाँ लेके जा रही है हमको मालूम नहीं, परंतु ये तो मालूम है कि जो आज के हमारे कर्म है वो हमारे साथ चलेंगे। ये मनुष्य साथ नहीं चलेगा, ये शरीर साथ नहीं चलेगा, जो हमारे पोजेशन है वो साथ नहीं चलेगा, हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे, हमारे गुण हमारे साथ चलेंगे। तो आज यदि मैं उस तरह की पैकिंग करूं कि मुझे आगे की जर्नी में कौन से संस्कार काम आने वाले हैं, कौन से गुण काम आने वाले हैं, तो मैं एक एक दिन का फायदा उठाती जाऊं, जितना मेरे से हो सके मैं गुड वाइब्रेशंस का दान देती रहूं, जो कुछ भी छोटा मोटा पुण्य कर्म मेरे से हो सके वो मैं करती जाऊं, वो मैं जमा करती रहूं, तो फिर वो मैं अपने साथ लेके जाएंगी। तो फ्यूचर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। आज भगवान मेरा साथी है, कल भी भगवान मेरा साथी ही होगा।
वेरी ट्रू। एक्चुअली दिस चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव, यू नो, बिकॉज इट्स अ जर्नी, वी नीड टू रियलाइज। और हम क्या होता है फियर ऑफ डेथ में, जो अपने जो 4 महीने हैं उन्हें भी, जो लोग कहते हैं कि मैं रोज अपनी मौत देखता हूँ, तो वो जो वो डर जो भय, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि इन 4 महीनों में या 6 महीने जितने भी है मेरे पास, उसमें मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कि इट्स अ जर्नी फॉर द नेक्स्ट एक्चुअली डेस्टिनेशन। जी,
और मैंने तो कईयों के एग्जाम्पल ये भी देखे हैं, योग बल से आयु लंबी बढ़ती है। मानो कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, पामिस्ट्री के हिसाब से भी कोई कहेगा कि बस दिस इज द एंड, परंतु जिस आत्मा ने परमात्मा की याद में अपना जीवन व्यतीत किया है, जिस आत्मा ने अनेकों की सेवा की है, तो वो जो दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, उनकी आयु लंबी होती जाती है। प्रैक्टिकल ये मैंने देखा हुआ है।
तो ये क्राइसिस जो हमने बात की जयंती बहन, वो कहीं ना कहीं हेल्थ जो एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस का इश्यू हो जाता है। आगे बढ़े और जो भय और सिचुएशंस हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, कि जब सिचुएशन लगता है कि मेरे अपने हाथ में नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली गई, या मेरे हाथ से मेरा प्रोफेशन चला गया, नौकरी चली गई, जो इतना बड़ा रिसेशन से आज गुजर रहा है, हर रोज खबर आ रही है कि इतनी जॉब्स जा रही हैं, तो वो जो एक मेजर क्राइसिस कि अब मैंने इतनी EMI देनी है, इतना मेरा खर्चा है, इतना, वो एक पूरा का पूरा क्योस जो मेरी जिंदगी में शुरू हो जाता है, वहां मैं उस क्राइसिस को मैनेज कैसे करूं लाइफ।
आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस चली है, उसका कारण प्रेसिडेंट ओबामा ने एक शब्द में बता दिया, ग्रीड। स्पिरिचुअल लोग तो ये कहेंगे ही, परंतु आज पॉलिटिकल लोग भी यही बात बता रहे हैं। उसमें फिर सोल्यूशन क्या, सिंप्लीफाई। जितना मैंने अपना फैलाव बना करके रखा था, वास्तव में मनुष्य को उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन को सिंपल बनाऊं, और उस सिंप्लिसिटी में भी मैं अपने मन की शांति को न खो बैठूं, और साथ ही साथ मैं अपने मन को संतुष्ट रखूं, वो मेरे वश की बात है। सिचुएशन मेरे वश की बात नहीं है, परंतु अंदर की स्थिति वो मेरे हाथ की बात है।
लेकिन वहाँ क्या होता है कि जब मैं तो चलो करने को तैयार हो जाता हूँ, जब मेरे अपने अपनों से, या तो वो ऐसा लगने लगता है कि सिचुएशन ने मुझे फोर्स किया, और वो फिर मैं फील करता हूँ कि मुझ पे बहुत दबाव है सिचुएशन का, और मैं फिर इस कारण आई स्टार्ट फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। आई हैव टू चेंज माई यू नो रेजिडेंशियल आस्पेक्ट, मेरा रहने का स्थान, मेरा जीने का स्थान जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। वो परिवर्तन अंदर से समझ के ही आ सकता है।
स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती कि जो कुछ भी हो रहा वो हम सब ने मिलकर के ये सिचुएशन बनाया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका दोष है, एक उंगली वहां करते हैं, तीन उंगली हमारे पर आती है। तो अभी मुझे क्या करना है? चलो ये सिचुएशन आई है, मैं कोई को भी दोष देंगी उससे कोई सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो पहले तो अपने मन को किसको दोषी न बनाए, एक्सेप्टेंस, ये बात हुई है, व्हाट शुड आई डू नाउ। और उसमें यदि हम शांत रहेंगे तो फिर हम अपने परिवार को भी शक्ति दे सकेंगे। हम उस उथल पाथल में आएंगे तो हमारे परिवार में भी वही उथल पाथल आएंगी। हम भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति पर अनेकों का आधार न सिर्फ धन के हिसाब से है परंतु इमोशनल स्टेबिलिटी के हिसाब से भी है। और यदि मैंने स्पिरिचुअल पावर लेकर के अपने को स्टेबल बनाया तो मैं औरों को भी, आजू बाजू जो भी मेरे नजदीक संबंधी है, बच्चे हैं, बीवी है, कोई भी है, मैं उन्हों को भी शांत में बना सकती।
जिस एग्जाम्पल से हमने जयंती बहन आज बात शुरू की थी कि 9/11 में जो एक ब्रदर थे और उनके एक इतने बड़े क्राइसिस में एक जो शांति का एहसास 60 लोगों को उस सिचुएशन से बाहर ले जाकर, क्योंकि वो पूरा शांति की वाइब्रेशंस और शांत होते ही जो विजन भी क्लियर हो गई कि मुझे करना क्या है,
जी
वो अगर वो इतनी बड़ी सिचुएशन में काम कर सकता है तो फिर अगर हम, जैसे हमने पहले भी कहा था कि छोटे से सिचुएशंस में आते हैं तो वो अभ्यास, यहीं से हमें अभ्यास करना शुरू करना पड़ेगा
जी
कि हमारे जो जीवन में छोटी छोटी चीजों को हमने क्राइसिस बनाया है यहीं से, क्योंकि आने वाले सिचुएशंस हम नहीं जानते कि क्या होने वाली है। और जिस तरह के युग में हम हैं, कल क्या होगा, ये जो अनसर्टेनिटी है ये डेफिनेटली है, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, बस में है हमारी अपनी स्थिति।
जी
आज जो हमने आपसे बातचीत की और जिस तरह से आपने कहा कि ना सिर्फ खुद को अपनी आत्म स्थिति में रखें बल्कि परमात्मा के उस साथ को हर रोज अपने साथ रखते हुए एक स्थिति में अगर हम रहेंगे तो हर छोटा या बड़ा क्राइसिस ना सिर्फ मुझे स्टेबल रखेगा बल्कि मेरे आसपास का जो भी माहौल है उसे भी वो संतुलन, वो स्टेबिलिटी देगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
सचमुच जिन्हें हम आज अपनी जिंदगी में क्राइसिस मानते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, उसमें अपनी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हमने जो पूरी बातचीत की है जयंती बहन से, उसमें हमने हर क्राइसिस को खूब नजदीकी से देखा है और हमने ये जाना हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी देता है। जरूरत इस बात की है कि उस क्राइसिस में अपनी स्थिति को कायम रखते हुए हम वो विजन रख पाए, और वो तभी आएगा जब हमें परमात्मा का साथ हमने लिया होगा, हम उस शक्ति को लेने के प्रैक्टिस में होंगे जहां वो विजन क्लियर हो जाएगा, चाहे वो बीमारी से भी जुड़ा हुआ हो। इतने खूबसूरत तरीके से आज हम उस सिचुएशन को कन्वर्ट कर पाए हैं। आप भी खुद सोचिए और जरूर इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है, आप ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं, राजयोग के अभ्यास को सीख सकते हैं। अगर आप अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हर बार हमारी कोशिश रहती है कि जीवन के उन पहलुओं को छूने का प्रयास करें, उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करें जो अभी भी हमें मुश्किल में डाल देते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही, लेकिन आगे मुलाकात होती रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति।